नमस्ते, मैं आरावू। नाइन नार ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। द लीन स्टार्टअप एरिक रीस की उद्यमिता और प्रबंधन पर लिखी प्रभावशाली पुस्तक है। यह उन नई कंपनियों और नवाचार परियोजनाओं के लिए एक कार्य पद्धति प्रस्तुत करती है जो अनिश्चित बाजार में ऐसा उत्पाद बना रही हो जिसके ग्राहकों उपयोगिता और व्यावसायिक मॉडल के बारे में प्रारंभ में स्पष्टता नहीं होती। रीस स्टार्टअप को केवल छोटी तकनीकी कंपनी नहीं मानते, बल्कि अत्यधिक अनिश्चितता में कुछ नया बनाने वाली किसी भी संस्था के रूप में देखते हैं। पुस्तक का उद्देश्य विस्तृत पूर्वानुमानों और लंबे विकास चक्रों के स्थान पर प्रमाण आधारित सीख को केंद्र में रखना है। इसकी प्रमुख प्रक्रिया बिल्ड मेजर लर्न है, जिसमें टीम पहले न्यूनतम व्यवहारिक उत्पाद बनाती है, फिर ग्राहकों के वास्तविक व्यवहार को मापती है और प्राप्त सीख के अनुसार आगे बढ़ने या दिशा बदलने का निर्णय लेती है। लीन मैन्युफैक्चरिंग से प्रेरित यह ढांचा संसाधनों की बचत भर नहीं है। इसका मूल आग्रह है कि निर्माण का हर प्रयास किसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक अनुमान की जांच करे। इसलिए पुस्तक उत्पाद विकास, मापदंडों, प्रबंधन और संगठनात्मक नवाचार को एक ही सीखने की प्रणाली में जोड़ती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, मानकीकृत सीख को प्रगति का वास्तविक माप मानना पुस्तक का केंद्रीय विचार मानकीकृत सीख है। इसका अर्थ केवल ग्राहक प्रतिक्रिया इकट्ठा करना नहीं, बल्कि यह प्रमाण जुटाना है कि टीम के किसी महत्वपूर्ण अनुमान में वास्तविकता का कितना आधार है। किसी नए उत्पाद में दो अनुमान विशेष रूप से निर्णायक होते हैं। पहला, क्या प्रस्तावित चीज ग्राहक के लिए उपयोगी या मूल्यवान है। दूसरा, क्या उत्पाद को बनाने, पहुंचाने और बढ़ाने का तरीका टिकाऊ व्यवसाय बना सकता है। रीस के अनुसार व्यस्तता, कोड की मात्रा, जारी फीचर या प्रेस कवरेज प्रगति के विश्वसनीय प्रमाण नहीं है। ये अक्सर वैनिटी मैट्रिक्स बन जाते हैं जो अच्छा दिखते हैं पर निर्णय स्पष्ट नहीं करते। इसके बजाय टीम को ऐसे प्रयोग बनाने चाहिए जिनके परिणाम किसी अनुमान को मजबूत करें या गलत सिद्ध करें। यह दृष्टि असफल प्रयोग को भी उपयोगी बनाती है, क्योंकि वह महंगी गलत दिशा में आगे निवेश रोक सकता है। वैज्ञानिक प्रयोग की तरह पहले परिकल्पना स्पष्ट होनी चाहिए, फिर मापने योग्य अपेक्षा तय होनी चाहिए और अंत में परिणाम के आधार पर निष्कर्ष निकालना चाहिए। इस प्रकार लीन स्टार्टअप जोखिम को समाप्त करने का दावा नहीं करती, वह जोखिम को छोटे, तेज और जांचे जा सकने वाले निर्णयों में बदलती है। यही बदलाव उद्यमिता को केवल दृष्टि और आत्मविश्वास की प्रक्रिया के बजाय अनुशासित सीखने का कार्य बनाता है। दूसरा, बिल्ड मेजर लर्न चक्र से अनिश्चितता को तेज प्रयोगों में बदलना रीस की कार्य पद्धति का संचालन तंत्र बिल्ड मेजर लर्न चक्र है। पहले चरण में टीम कोई ऐसा उत्पाद या फीचर बनाती है जो सबसे जरूरी अनुमान की जांच कर सके। दूसरे चरण में वह ग्राहकों के व्यवहार से डेटा लेती है। तीसरे चरण में वह सीखती है कि प्रारंभिक धारणा सही थी, आंशिक रूप से सही थी या गलत थी। चक्र का उद्देश्य अधिकतम फीचर बनाना नहीं, बल्कि इस सीखने के समय को घटाना है। इसीलिए पुस्तक में यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि अभी कौन सा प्रयोग सबसे जल्दी अनिश्चितता घटा सकता है। कई टीमें तकनीकी पूर्णता, व्यापक योजना या बड़े लॉन्च की तैयारी में महीनों बिताती हैं। लेकिन यदि ग्राहक की मूल समस्या या समाधान की उपयोगिता गलत समझी गई हो, तो यह सारा काम गलत आधार पर हो सकता है। छोटा चक्र इस खतरे को जल्दी सामने लाता है। फिर भी तेजी का मतलब बिना सोच के रिलीज करना नहीं है। प्रयोग को उपयोगकर्ता के लिए पर्याप्त रूप से समझने योग्य होना चाहिए और मापन पहले से तय होना चाहिए। बिल्ड मेजर लर्न उत्पाद प्रबंधन को उत्पादन केंद्रित प्रक्रिया से बदलकर ज्ञान केंद्रित प्रक्रिया बनाता है। टीम की क्षमता का मूल्य इस बात से आंका जाता है कि वह कितनी विश्वसनीयता से सीखती है और उस सीख को अगले निर्माण निर्णय में कितनी जल्दी उतारती है। तीसरा, न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद का लक्ष्य सबसे छोटा प्रमाण जुटाना है। न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद या MVP पुस्तक की सबसे चर्चित अवधारणाओं में है। इसका अर्थ घटिया, अधूरा या ग्राहकों के प्रति लापरवाह उत्पाद नहीं है। इसका अर्थ वह सबसे छोटा संस्करण है जो वास्तविक ग्राहकों के सामने मूल्य प्रस्ताव की जांच कर सके और टीम को उपयोगी सीख दे सके। रीस इस अवधारणा के जरिए उस प्रवृत्ति को चुनौती देते हैं जिसमें संस्थापक पहले एक परिष्कृत समाधान बनाना चाहते हैं और बाद में बाजार से पुष्टि खोजते हैं। MVP पहले पुष्टि तलाशता है, फिर विस्तार के लिए निवेश करता है। इसका रूप उत्पाद के संदर्भ पर निर्भर हो सकता है। कभी यह सीमित फीचर वाला संस्करण होगा, कभी मैनुअल सेवा के माध्यम से दिया गया अनुभव और कभी ऐसा प्रदर्शन जो ग्राहक की रुचि या व्यवहार को माप सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रयोग ग्राहक के वास्तविक चुनाव के करीब हो। केवल यह पूछना कि लोग किसी विचार को पसंद करते हैं या नहीं पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कथित पसंद और वास्तविक उपयोग में अंतर हो सकता है। एमबीपी से आरंभिक ग्राहक शिकायतें, भ्रम और सीमाएं भी दिखती है। ये संकेत असुविधाजनक हो सकते हैं, पर इन्हें जल्दी देखना अधिक उपयोगी है। पुस्तक का तर्क है कि आरंभ में सीखने की लागत कम रखना बाद में बड़े स्तर की गलतियों की लागत घटाता है। इसलिए एमबीपी उत्पाद की अंतिम गुणवत्ता का मानक नहीं, सीखने की गति का उपकरण है। चौथा, नवाचार लेखांकन और कोहोर्ट विश्लेषण से वैनिटी मैट्रिक्स पर नियंत्रण। लीन स्टार्टअप में मापन केवल रिपोर्टिंग का काम नहीं, प्रबंधन का आधार है। रीस नवाचार लेखांकन का विचार देते हैं ताकि अनिश्चित उत्पादों की प्रगति को सामान्य वित्तीय परिणामों या कुल उपयोगकर्ता संख्या से अलग तरीके से समझा जा सके। शुरुआती चरण में बिक्री, लाभ या बड़े पैमाने की वृद्धि अक्सर पर्याप्त संकेत नहीं देते। टीम को पहले आधार रेखा समझनी होती है, फिर सुधार करने वाले प्रयोग चलाने होते हैं और अंततः यह देखना होता है कि बदलाव दोहराए जा सकने योग्य वृद्धि की ओर ले रहे हैं या नहीं। कोहोर्ट विश्लेषण इसमें उपयोगी है। इसमें सभी ग्राहकों को एक ही कुल आंकड़े में मिलाने के बजाय किसी अवधि में जुड़े ग्राहकों के समूह के व्यवहार को समय के साथ देखा जाता है। इससे पता चल सकता है कि नया अनुभव वास्तव में सक्रियता, वापसी या भुगतान में सुधार ला रहा है या कुल संख्या पुराने प्रयासों और प्रचार के कारण बढ़ रही है। पुस्तक स्प्लिट टेस्टिंग को भी महत्वपूर्ण मानती है, जहां अलग उपयोगकर्ता समूहों को अलग संस्करण दिखाकर प्रभाव की तुलना की जाती है। ऐसे मापदंड सीधे निर्णय से जुड़े होने चाहिए। यदि डेटा टीम को यह नहीं बताता कि क्या बदलना है, तो वह केवल सूचना है, उपयोगी लेखांकन नहीं। नवाचार लेखांकन का योगदान यह है कि वह आरंभिक अस्पष्ट प्रगति को परीक्षण योग्य संकेतों में बदलता है और आत्मसंतोष पैदा करने वाले आंकड़ों से बचाता है। अंत में परसिवियर या पिवट का निर्णय और निरंतर नवाचार की संगठनात्मक व्यवस्था। पुस्तक के अनुसार हर प्रयोग अंततः एक रणनीतिक प्रश्न की ओर ले जाता है। क्या वर्तमान दिशा में परसिवियर करना चाहिए या पिवट करना चाहिए? पिवट का अर्थ पूरी कंपनी को अनियंत्रित ढंग से बदल देना नहीं है। यह मूल सीख बनाए रखते हुए रणनीति के किसी महत्वपूर्ण तत्व में संरचित बदलाव है, जैसे ग्राहक वर्ग, समस्या, समाधान, वितरण माध्यम या राजस्व मॉडल। जब मापदंडों में सार्थक सुधार नहीं आता और प्रयोग बार बार मुख्य अनुमानों को समर्थन नहीं देते, तब केवल अधिक मेहनत करना समाधान नहीं होता। पिवट दिशा बदलने का अनुशासित विकल्प देता है। दूसरी ओर, हर कमजोर परिणाम पर पिवट करना भी गलत है, क्योंकि तब टीम को किसी अनुमान को पर्याप्त रूप से जांचने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए नियमित पिवट या परसिवियर बैठकें उपयोगी है, जिनमें पूर्व निर्धारित प्रमाण के आधार पर निर्णय हो। रीस इस सोच को बड़े संगठनों तक भी ले जाते हैं। वहां नवाचार टीमों को तेज प्रयोगों के लिए कुछ स्वायत्तता, ग्राहक तक पहुंच और स्पष्ट जवाबदेही चाहिए। स्थापित कंपनी में चुनौती केवल नया विचार नहीं, उस विचार को मौजूदा प्रक्रियाओं के बीच सीखने योग्य ढंग से चलाना है। इस प्रकार लीन स्टार्टअप उद्यमी की व्यक्तिगत तकनीक नहीं रहती, वह निरंतर नवाचार के लिए संगठनात्मक व्यवस्था का प्रस्ताव बन जाती है। निष्कर्ष में, द लीन स्टार्टअप उन संस्थापकों, उत्पाद प्रबंधकों, डिजाइनरों, इंजीनियरों और कॉर्पोरेट नवाचार टीमों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जिन्हें अनिश्चित ग्राहक जरूरतों के बीच नए उत्पाद या सेवा के बारे में निर्णय लेने होते हैं। इसे पढ़ने वाला व्यक्ति तैयार नुस्खा, निश्चित बाजार पूर्वानुमान या सफलता की गारंटी नहीं पाएगा। इसके बजाय उसे यह समझ मिलेगी कि जोखिमपूर्ण धारणाओं को स्पष्ट कैसे करें, उन्हें कम लागत वाले प्रयोगों में कैसे बदलें, और ग्राहक व्यवहार से मिले संकेतों पर निर्णय कैसे लें। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह लंबे निर्माण चक्र, फीचर की भीड़ और दिखावटी प्रगति से बचने के लिए ठोस भाषा देती है। एमबीपी, कोहोर्ट विश्लेषण, स्प्लिट टेस्टिंग और पिवट जैसे उपकरणों को एक ही निर्णय प्रणाली में रखा गया है। यही इसे सामान्य उद्यमिता पुस्तकों से अलग करता है, जो अक्सर प्रेरणा, नेतृत्व या विस्तृत बिजनेस प्लान पर अधिक निर्भर रहती है। रीस का विशिष्ट योगदान यह है कि वे उत्पाद निर्माण को सीखने की दर से जोड़ते हैं और मापन को रणनीति का अभिन्न अंग बनाते हैं। हालांकि हर क्षेत्र में इसके प्रयोगों को ग्राहक विश्वास, गुणवत्ता, सुरक्षा और नियाम की जिम्मेदारियों के अनुसार ढालना होगा, फिर भी इसका मूल सिद्धांत व्यापक है। पहले उस बात का प्रमाण खोजिए जो व्यवसाय को सच बनाती है, फिर उसी प्रमाण के अनुपात में संसाधन लगाइए। इसीलिए पुस्तक नए विचारों को अनुशासन और अनुकूलन के साथ आगे बढ़ाने का स्थायी संदर्भ बनी हुई है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं रीस एरिक, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।